السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. أمیدك يا آجكل سب کی کوشش ہوگی کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا دور کریں، اس میں تدبر کریں. آپ اس قرآن کا جو اکرام اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آخرت میں ہے. قرآن کریم کی وجہ سے جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے، وہ تو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے. دنیا میں بھی اس کی بہت زیادہ برکات، رحمتیں اور بہت سارے انعامات ہیں جو قرآن کریم کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں، مگر آخرت کا حال جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں آج یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخرت میں کیا ملے گا قرآن کریم کو پڑھنے والے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے بتایا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب انسان کی یعنی مومن کی جو روح ہے اس کو قبض کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابھی ان میں ملک الموت نہیں ہے. بعض روایات میں آتا ہے 18 فرشتے آتے ہیں، 9 جنت میں لے جانے والے، 9 جہنم میں. لیکن یہ اتنے تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں جو کہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، اور جنت کے رومال اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے کفن یہ سب لے کر آتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس بندے کے سرہانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اور ملک الموت یہ نہیں کہتے نکلو، بلکہ کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، چل اللہ کی مغفرت، اس کی رضا اور اس کی جنت کی طرف. یعنی پہلے تو اس کو کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، یعنی کتنا پیارا اس کا نام لیا جاتا ہے، ایک پاک روح. اب اس سے ہی خوشی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف، تو وہ کیوں نہ روح نکلے گی. پھر تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ، اور جو ہی نکلتی ہے وہ بس پلک جھپکنے کی دیر تک صرف ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے. اس کے بعد فوراً ساتھ والے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کو جنت کی خوشبوئیں لگاتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازے پہ جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے اور یہ خوشبوئیں کیسی، تو ان کو جواب ملتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہیں. اور پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں کے فرشتے اس روح کے ساتھ ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں. جیسے ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گاڑیوں کا کتنا بڑا ایک ہجوم ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں ان کے ساتھ ساتھ آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں بھی ان کو گھیرے میں لیا ہوتا ہے اور پھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ جو بہت ہی بڑے آپ دیکھتے ہیں صدر وزیر ایسے جب آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو اس کی روح کو اتنا استقبال دیا جا رہا ہے کہ فرشتے ساتھ جا رہے ہیں دوسرے آسمان تک. دوسرے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں کا دربان بھی پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ روح، کون آیا ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے اور دوسرے آسمان والے فرشتے بھی ساتھ مل جاتے ہیں. اب پہلے آسمان والے بھی ساتھ تھے اور دوسرے والے بھی مل گئے. اسی طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک سب آسمانوں کے فرشتے ساتھ ساتھ اس کے اگلے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دنیا میں لے کے جاؤ. تو اس روح کو اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے اور لوگ جب قبر میں رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں اسی وقت منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. وہ پر پر جواب دے دیتا. فرشتے جواب سن کے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے یہ پتا چلتا، تو وہ کہتا ہے اب یہ بات آپ کو بتاتی کہ یہ بندہ کون ہے. वो आगे से कहता है, ये लंबी हदीस है जिसके अंदर ये पोर्शन गौर तलब है कि वो कहता है मैंने कुरान पढ़ा था, उसके मुताबिक अमल किया और मैंने तस्दीक की जो कोई उसमें है, कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया, मैंने इस बात की तस्दीक की जो भी कुरान में है। यानी ये क्वेश्चंस के आंसर, ये कितना मुश्किल टेस्ट है, मुनकिर नकीर को देखना आसान नहीं होगा, बहुत ही उनकी भी दहशत होगी। और एक नई दुनिया है, कब्र की दुनिया, और इंसान एक पहली दफा फरिश्तों जैसी मखलूक को ऐसे देख रहा है इस हालत में कि वो जरा उनका काफी रोब दबदबा और काफी उनकी जो हैयत बताई जाती है खौफजदा करने वाली है, लेकिन वो इंसान फिर भी उनके जवाब दे पाता है। और किस वजह से दे पाता है? कुरान पढ़ा था मैंने, मैंने उस पे अमल किया था। आज जिस कलाम के लिए लोग वक्त निकालने को फालतू समझते हैं, रमजान खत्म हो जाता है तो जिसको उठा के ताक में रख देते हैं और उसके बाद कभी दोबारा खोलने का नाम नहीं लेते, अनलेस के कोई मर जाए तो उस पे खोल लेते हैं, या किसी ने नया घर खरीद लिया तो उस पे खोल लेते हैं, अदरवाइज पूरा साल ये मौका ही नहीं मिलता कि इस कुरआने करीम को खोला जाए। यही कुरान कितना बासआदत है, इसकी कितनी बरकत है कि वहां कब्र के उस गड़े में जहां पे कोई साथ देने वाला ना होगा, कोई हेल्प करने वाला ना होगा, कोई चीटिंग नहीं कराने वाला होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, लोग छोड़ के चले गए, वहां पर इस कुरान की वजह से जवाब दिया जा सकेगा। ये जवाब देना जो है ना, हर एक के बस का काम नहीं होगा। अब उसकी तरफ से जब अजाब आएगा, कब्र का अजाब उसके सर की तरफ से आएगा, तो ये कुरान कहेगा इसको छोड़ दो, कुरान आड़ बन जाएगा, कुरान कहेगा नहीं यहां से नहीं मैं आने दूंगा। फिर दाएं तरफ से अजाब आएगा तो नमाज खड़ी हो जाएगी, कहेगी रुक जाओ यहां से नहीं आ सकते। बाएं तरफ से आना चाहेगा अजाब तो ज़कात खड़ी हो जाएगी और कहेगी रुक जाओ। वाओं की तरफ से आना चाहेगा तो नेकियां और सिला रहमी और खैर ख्वाही और अल्लाह के रास्ते के अंदर चल के जाना, ये खड़े हो जाएंगे और इसको नहीं आने देंगे अजाब को। यानी ये इंसान के गार्ड्स हैं, ये उसके पहरेदार हैं, इनको भी कभी हमने तैयार किया और इतना स्ट्रोंग बनाया कि ये हमारा पहरा दे सके? क्या ये इतने मजबूत हैं? आप देखेंगे यही जकात जो भारी लगती है अदा करनी, और हर वक्त ये होता है कि बस जकात ना देनी पड़ जाए, हमारी तो जकात इतनी ज्यादा होगी फिर इतने पैसे चले जाएंगे। यही नमाज जो दूसरी नमाज का वक्त आता है तो ऐसे लगता है कि हाय फिर से नमाज का वक्त आ गया, और जो पढ़ते भी हैं तो मारे बांधे की तेज तेज पढ़ते, हालांकि वो कोई नमाज नहीं जिसमें रुकू और सुजूद भी ठहर ठहर के ना हो। जो मैंने आपको दो सजदों के दरमियान दुआ बताई थी, वो तभी आप पढ़ सकते हैं ना, अल्लाहुम्म अग़फिरली वरहमनी वाली, जिस वक्त के थोड़ी देर ठहरेंगे तो पढ़ेंगे। और इसी तरह रुकू से जो खड़े होते हैं तो वो उसको तो कोई रुकन समझते ही नहीं, उसको कोई इसका हिस्सा समझते ही नहीं नमाज का, बल्कि रुकू से खड़े हुए ही नहीं अभी तो फौरन सजदे में चलेगा, सजदे से सर उठाया ही नहीं कि फौरन दूसरे सजदे में चलेगा। ऐसे नमाज नहीं होती, हर जगह पर ठहरना है, आपके तमाम आज़ा अपनी जगह पे आ जाएं, फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन में जा सकते हैं। जबकि हमें देख के कोई नमाज पढ़ते हुए शायद सोचेगा कि कोई वर्जिश कर रहे हैं, जो इतनी तेज तेज उठक बैठक शुरू हुई भी है। तो ये तो वो चीजें थी जिनको हमने संवार संवार के करना है, ताकि कब्र के उस अंधेरे घड़े के अंदर ये हमारे लिए गार्ड्स का काम दे। हमारे पास अगर गार्ड्स ही नहीं है, या हमारे गार्ड्स इतने कमजोर हैं कि वो वहां पे हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर कौन हमें बचाएगा? और अगर कुरान ही जिंदगी में नहीं है तो वो क्या चीज होगी जो हमारे सर की तरफ खड़ी हो जाए, जो हमारे सर को अजाब से बचाए? अजाब तो जिधर से भी जगह देखेगा वो उधर से दाखिल हो जाएगा। तो इन अपने अमाल के पर तवज्जो दीजिए, सदका खैरात भी करें जकात के अलावा, ताकि जकात में कोई कमी हो तो वो पूरी हो जाए। फर्ज नमाजें जब शुरू की उसे पहले नहीं पढ़ते थे, तो अब नफाफिल कसरत से अदा करें ताकि उन फर्ज नमाजों की कमी पूरी हो जाए और अल्लाह ताला माफ कर दे। कुरान करीम के लिए वक्त निकालें, ये प्लान करें अभी से कि मैंने रमजान के बाद भी कुरान से ताल्लुक रखना है, कुरान को सीखना है, मैंने इसको पढ़ना है, इसको समझना है, ताकि मैं कब्र में सवालों के जवाब दे सकूं। आप सोचते होंगे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मैं अभी से रट लूंगी इनको, हालांकि ये सब जवाब नहीं दे सकेंगे। मसलन मुनाफिक ये नहीं कह सकेगा कि हाँ मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। लोग कहेंगे, बाज लोग कहेंगे, जो लोग कहते थे वही हम कहते थे, हमें तो नहीं पता, हम तो वही कह देते थे। जैसे एक दीन वो भी होता है ना जो अवामी दीन होता है, यानी अवाम का जो दीन है वही मेरा दीन है, जो उनका रास्ता वही मेरा रास्ता, जिस चीज पे वो कायम है उस पे ही मैं चल रही हूं। तो ये दीन नहीं चाहिए, जिसने वाकई अल्लाह को रब बनाया होगा, इस दीन इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल किया होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक चला होगा, वही जवाब दे सकेगा। और जिसने इस्लाम को दूर दूर रखा, अपने घर से दूर, अपनी जिंदगी से दूर, अपनी औलाद से दूर, कि ये कहीं इसकी परछाई ना पड़ जाए, हम मुल्ला और मुल्लानी ना बन जाए, वो कैसे ये जवाब दे सकेंगे? जब ये होगा तो इसके बाद अल्लाह ताला इस बंदे के लिए फैसला सुना देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा है, इसको जन्नत का लिबास पहना दो और इसके नीचे जन्नती बिछोना बिछा दो। अभी तो लोग मट्टी में डाल के गए हुए थे ना, कहा कह दिया जाएगा जन्नती बिछोना बिछा दो, और वहीं पे कब्र में ही जन्नत का लिबास भी पहना दो। सुभान अल्लाह, कितना इनाम है इसके लिए। और इसकी कब्र को खोल दो, कितना खोला जाए, इतना कि हद्दे निगाह तक, ये नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर, हमारा कमरा भी हद्दे निगाह तक नहीं होता, हमारा घर भी हद्दे निगाह तक नहीं होता, हमारे घर में अगर कोई लॉन है तो वो हद्दे निगाह तक नहीं होता। हद्दे निगाह क्या होती है, जैसे आसमान को आप देखते हैं तो हद्दे निगाह तक आसमान नजर आता है, इसको कहते हैं, यानी जहां तक इंसान की नजर पहुंच जाए। तो आप सोच लें कि अपने घरों से, अपने बागों से, अपनी सड़क से, अपनी जो जो भी आप जमीन पे चीजें देखते हैं, ये इनमें कोई हद्दे निगाह तक आप नहीं कह सकते, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो इतना ज्यादा उसकी कब्र को खुला कर दिया जाएगा, और उस वो तो चाहेगा कि मैं दुनिया में जाके बताऊं कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे कितना इनाम से नवाजा, कितना प्रोटोकॉल दिया, लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, अभी नहीं, तुम सो जाओ दुल्हन की तरह, आराम से सो, मजे से सो, और फिर उठेगा कब, जब कयामत का नुफखा फूंका जाएगा। उस दिन तो हर शख्स हवास भागता होगा ना, किसी को समझ ही नहीं आ रही होगी कि करें क्या, क्या होगा मेरे साथ। ऐसे वक्त में कुरान एक खूबसूरत इंसान की सूरत में आ जाएगा, उसने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना होगा और बहुत ही आला किस्म की खुशबू लगाई होगी। इंसान सोचेगा ये कौन है, उसे पूछेगा, वो कहेगा मैं कुरान हूं, जिसको तू पढ़ता था तो तेरा हलक खुश्क हो जाता था, नहीं इतना पढ़ता था, गर्मियों के दिनों में भी पढ़ रहा है और रातों की तारीकियों में पढ़ता था, रात के अंधेरे के अंदर ही इसका वक्त कुरान के साथ गुजरता था। हम भी सोचेंगे कभी ऐसा होता है कि हम कुरान इतना पढ़ें कि हमारा हलक खुश्क हो जाए, यानी रमजान के अलावा, और कभी ऐसा भी होता है कि हमारी रातें वो कुरान के साथ गुजरें रमजान के अलावा। अभी तो आप तरावी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आम दिनों में कभी रात को कुरान खोल के देखा, या हर रात कोई मूवी है, दोस्तों से गपशप है, लेकिन कुरान की तरफ नहीं आते? तो ये कुरान उस बंदे को फिर अपने साथ लेके जाएगा अल्लाह ताला के हजूर, उसको पेश करेगा। ये 50,000 का दिन है, कयामत का दिन, लेकिन इस कुरान के पढ़ने वाले, अमल करने वाले, इसको सीखने समझने वाले, इसके लिए ये इतना लंबा दिन कितना हो जाएगा, सिर्फ जोहर से असर तक का वक्त बस। और जहां हशर के मैदान में सफों की सफें लगी हुई, कोई सालेहीन की, कोई अंबिया की, कोई मुजरिमों की, कोई किसी की, कोई किसी की, वहां पर अब एक और इनाम दिया जाएगा इस शख्स को। कब्र में तो इनामात मिल गए, और अब एक और इनाम सारी मखलूक के सामने दिया जाएगा। वहां पे तो कोई देख नहीं रहा था ना कब्र में, अब मगर अब तो सब खड़े हुए और सब देख रहे हैं, उनमें अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा कि ए कारिये कुरान, ए माहिरे कुरान या ए हाफिजे कुरान, अपना ये इनाम वसूल करके इन सफों में से निकल जा और वहां मुकर्रब जो इज्जत वाले फरिश्ते हैं उनके साथ जाके खड़ा हो। तो इसको उन फरिश्तों के साथ खड़ा किया जाएगा जो बहुत इज्जत वाले फरिश्ते हैं। ये कौन है? जिब्राइल अलैहि सलाम, मिकाईल अलैहि सलाम। यहाँ पे तो हमें थोड़ी देर के लिए किसी के साथ 2 मिनट तस्वीर खिंचवाने का मौका भी मिल जाए तो हम इतने खुश होते हैं कि फलां के साथ मेरी पिक्चर हुई है, फलां के पास मैं गया था, फलां ने मेरे साथ हाथ मिलाया, फलां के साथ मैं खड़ा हुआ था। तो कहां फरिश्तों के साथ, और वो भी मुअज्जत फरिश्तों के साथ, क्योंकि ये माहिर था कुरान का, इसने कुरान को वक्त दिया तो माहिर बना ना। अगर वक्त ही नहीं देंगे किसी चीज को तो कैसे माहिर बनेंगे उसके? हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये कितनी प्रैक्टिस करता रहा होगा कि आज वो इन फरिश्तों की सफों में खड़ा हुआ। फिर कुरान कहेगा अल्लाह ताला से सिफारिश करते हुए, कुरान कहेगा कि या अल्लाह ताला इसको और भी इनामात से नवाज दे। अल्लाह ताला कुरान करीम की सिफारिश को कबूल फरमाएगा और इस आदमी को इज्जत का लिबास दिया जाएगा, जन्नत की खिलत दी जाएगी। अभी भी कुरान बस नहीं कर रहा, फिर से सिफारिश करेगा, और देखें अल्लाह ताला इसको चुप भी नहीं कराता और अल्लाह ताला इसकी सिफारिश भी कबूल करता है। तो कुरान कहेगा या अल्लाह ताला इसको और इनामात से नवाज, और हुक्म होगा फरिश्तों को कि इसके सर पे ताज सजाया जाए। फिर कुरान कहेगा या अल्लाह इसको और भी इज्जत और इकराम से नवाज, तो हुक्म होगा उसके वालदैन के सरों पे भी ताज सजाए जाएं, और ये ताज ऐसे हैं कि इनका एक मोती भी सूरज की रोशनी को मांद कर दे। इमाम इब्नुल कय्यम फरमाते हैं कि यहाँ इशारा इस बात की तरफ है कि उनकी जो ताज हैं ये पूरी मखलूक की तवज्जो का मरकज बन जाएंगे, सारे देखेंगे ये कितना जबरदस्त खानदान है, माँ बाप भी और बेटा भी या बेटी भी, कितने खूबसूरत ताज इनके सरों पे हैं, ये जो जिनकी रोशनी इतनी ज्यादा है, इतने कीमती ये ताज हैं कि दुनिया सारी की सारी आप बेच देते हैं तो इनकी कीमत नहीं दे सकते। फिर कुरान कहेगा दोबारा इसकी सिफारिश करते हुए या अल्लाह इससे राजी भी हो जा। तो बेशक अल्लाह ताला ने तो सारे इनामात दिए ही इसलिए कि वो राजी था ही तो दिए ना, मगर कुरान चाहता है कि इस बात को सबको बयान किया जाए, अल्लाह ताला सबके सामने फरमाएगा कि ए दुनिया वालों गवाह रहना मैं इस बंदे से राजी हो गया। अल्लाह हू अकबर। और फिर कुरान इस बंदे को जन्नत में पहुंचा के आएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा ए कारिये कुरान, ए माहिरे कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, तेरी मंजिल वहां है जहां पे तेरा कुरान खत्म हो। सुभान अल्लाह। ये वो तड़प होनी चाहिए जो हमारे अंदर हो कि हम कुरान के ऐसे माहिर बन जाएं, हमारा कुरान के साथ ऐसा वक्त गुजरे। ये कुरान ऐसे ही साथी नहीं बनेगा, जिसने दुनिया में इसको अपना साथी बनाया ये उसका साथी कयामत के दिन बन जाएगा, और जब तक जन्नत में नहीं पहुंचा देगा उस वक्त तक ये बस नहीं करेगा, थकेगा नहीं, उस वक्त तक ये सिफारिश करने को खत्म नहीं करेगा। इससे अच्छा साथी कहीं आपको मिल सकता है कोई? इससे बेहतरीन साथी कहीं ला सकते हैं क्या? तो कोशिश करें कि कुरान के साथ थके नहीं, बल्कि जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। रात के वक्त जब आप सोने के लिए बिस्तर पे भी जाएं तो आखिरी काम क्या होना चाहिए? कुरान का पढ़ना। सूरह बकरा की खास तौर पे जो आखिरी 2 आयात हैं वो जरूर पढ़ के सुने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये 2 आयतें पढ़ ली तो ये उसके लिए काफी हो गई। काफी हो गई का मतलब क्या? किस चीज से काफी हो गई? यानी शयातीन से हिफाजत के लिए काफी हैं ये। और फिर कुछ नहीं भी पड़ता था तो शयातीन से हिफाजत हो गई। फिर हर किस्म के शर से, चोर डाकू, ये देखिए ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि किस चीज़ से काफ़ी है, तो उलमा ने कहा इसमें हर चीज़ ही आ जाती, तहज्जुद पढ़ने से भी काफ़ी है, कुरान पढ़ने से भी काफ़ी है, हिफाजत हर शर से हो इसके लिए भी काफ़ी है। तो ये दो आयतें कभी भी ना छोड़े, रमज़ान के बाद भी। इसी तरह आयतल कुर्सी पढ़े बगैर ना सोएं कभी भी। आयतल कुर्सी हिफाजत है, और आपके साथ अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है जो आपकी हिफाजत करेगा सारी रात। वो आयतल कुर्सी भी कुरान का हिस्सा, ये भी कुरान का हिस्सा, यानी हमारा जो आखिरी अमल हो रात को वो भी कुरान ही है। पूरा दिन हमने क्लोज किया कुरान के साथ। और आप देखेंगे अगर रात को खुदा ना हास्ता सोते में मौत आ जाए तो भी आखिरी अल्फाज कुरान ही थे। कलमा भी पढ़ के सोया करें, और ये भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर कलमा पढ़ के सोएं तो इस सोच के साथ सोएं कि अल्लाह ताला अगर मेरी मौत आ जाती तो कलमे पे मौत। इसी तरह वुजू करके सोएं, वुजू करके सोएंगे तो एक फरिश्ता आपके साथ सारी रात गुजारेगा, और सुबह जब आप उठते हैं तो फिर फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला इसकी बख्शिश कर दे। तो एक बिस्तर पे जाने का और रात को सोने का भी एक एहतमाम है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के वुजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान पढ़ते हैं, फिर अस्कार करते हैं, तो रात को सोने जाने के भी एक मतलब एहतमाम है जो आपको करने की ज़रूरत है। तो हम तो सिर्फ नाइट सूट पहन के तो फिर उस बात सोचते हैं कि हाँ बस बिस्तर पे गए और ख़त्म, आज का दिन ख़त्म। नहीं, दिन को ख़त्म करना भी अल्लाह के जिक्र के साथ है, उसके कुरान के साथ है। इसी तरह हम खास तौर पे ऐसे औकात को देखें दिन भर में जिसमें आप नेकी का एहतमाम करें, जिसमें आप जिक्र का एहतमाम करें, दुआ का एहतमाम करें। पांच औकात ऐसे हैं जिनके अंदर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये पांच औकात कौन से हैं? एक तो जुहर से पहले का, क्योंकि हदीस में आता है कि सूरज ढलने तक आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और जुहर की नमाज के बाद बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उस वक्त कोई भलाई करूं और मेरी तरफ से कोई भलाई ऊपर को चढ़ जाए, क्योंकि आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं ना इसलिए। तो हर अजान के वक्त भी हदीस में आता है कि जब नमाज का वक्त होता है, यानी अजान जब कही जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआओं की कबूलियत होती है। इसी तरह दो नमाजों के दरमियान भी जो वक्फा होता है उसमें इंसान इंतजार करता रहता है ना, तो वो जो आप इंतजार करते हैं, तो हम तो इंतजार अक्सर नहीं करते, बल्कि जब अजान दूसरी होती है तो कहते हैं हाय फिर से नमाज का टाइम आ गया। हालांकि जो इस पे खुश होता है ना कि ओ मैं अभी एक नमाज पढ़ चुका, कब आएगा दूसरी नमाज का टाइम, तो हदीस में आता है फिर खुश हो जाओ, तुम्हारे रब ने आसमान के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया और फरिश्तों के सामने तुम पर नाज कर रहा है और कह रहा है मेरे बंदे की तरफ देखो, एक फर्ज इसने अदा किया, दूसरे का इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये इंतजार भी एक नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों के ऊपर फखर करता है उनके सामने कि देखो इस मेरे बंदे को, और दरवाजे आसमानों के खोल दिए जाते हैं। फिर आधी रात के बाद तो आपको पता ही है जो एक तहाई रात है आखिरी रह जाती है, रात का जो 1/3 पार्ट रह जाता है उसके अंदर भी आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। आपको पता है वो मुनादी निदा करता है, कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई ऐसा है जो सवाल करे तो उसका सवाल पूरा किया जाए, कोई ऐसा है जो कि मुसीबत में मुब्तला हो तो उसकी मुसीबत को दूर किया जाए। तो उलमा कहते हैं कि हदीस में आता है जैसे कि रात के वक्त अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन के वक्त अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है कि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला को बंदे की तौबा का कितना इंतजार रहता है, तो उस गुलाम की खुश नसीबी है क्या कहने जिसके दरवाजे पर खुद उसका मालिक चल के आ जाए और दस्तक दे और कहे कि जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। तो इस टाइम पे भी समझ लें अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल के खुद आपसे पूछ रहा है कि जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, और किसी ने बख्शिश मांगनी है, कोई तौबा करना चाहता है तो वो तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। रात को भी अल्लाह ताला हाथ फैलाता है, कोई है नहीं। अल्लाह ताला को कितना पसंद है कि बंदा किसी तरह तौबा करके उसकी तरफ पलट है। और बदनसीब है वो इंसान जो इस वक्त भी सोता रहे और मालिक पूछ रहा है और वो उसको कोई हाजत ही नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं। फिर हम लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, दुआओं में याद करो, और जो दुआ के औकात हैं उनको हम मिस कर देते हैं, अपने लिए खुद ही दुआ नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो दुआ करने वाला हो और उस वक्त उसकी दुआ कबूल ना की जाए, ऐसा कोई भी नहीं। इसी तरह जो नमाज में दुआए इस्तफ्ताह में ये कलिमात कहता है, उस वक्त भी आसमान के दरवाजे खोल दिए। दुआए इस्तफ्ताह क्या है, जैसे आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, शुरू की आपने नमाज, आप कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसकी बजाय ये वाले कलिमात जो कहता है ना, वो कलिमात भी बहुत अच्छे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और ये भी बहुत अच्छा है। तो बदल बदल के करने चाहिए, इसलिए कि जब आप बदल बदल के करते हैं तो उसका फायदा बहुत है कि नमाज में फिर दिल लगता है, जरा कंसंट्रेशन भी हो जाती है। वरना एक ही मशीन की तरह बोलते जाना, एक एक मशीनी अंदाज में और उस स्पीड में बोलते जाना क्योंकि जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपको आपका फोकस उस पर नहीं होता। जब आपने बदल के पढ़ने होंगे तो फोकस भी होगा, तो उसमें आप बहुत ही आसान देखें ये दुआ है कि अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरात व असीला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो किसी आदमी ने ये कहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा फिर बाद में कि ये कलिमात किसने कही हैं, तो उस आदमी ने कहा मैंने कहे। आपने फरमाया मैं हैरान हुआ, इन कलिमात को लेने के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह, इन कलिमात के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, यानी ये कलिमात इतनी तेज से ऊपर चढ़े होंगे। अल्लाह अकबर। तो इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने तो जब से ये बात सुनी तो मैंने पल्ले बांध दी, मैंने कभी इस चीज को छोड़ा ही नहीं कि जब नमाज पढ़ते थे तो ये वाली दुआ इस्तफ्ताह पढ़ते थे वो। इस तरह आप और भी जगहों के ऊपर आप देखें ना, आप अगर बदल बदल के इस तरह ही पढ़ें तो बहुत अच्छा है। जैसे सजदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में और सजदे में कसरत से क्या दुआ करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिर ली। सुबहानक अल्लाहुम्मा तो आपको पता ही है, जैसे हम शुरू में मांगते हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर उसके बाद रब्बना कहना वह अभी हमदी का, और उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। तो इसमें तो दुआ भी है बख्शिश की, और आपको पता है सजदे में दुआएं कबूल होती हैं, सजदे में इंसान अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। रुकू में भी ये पढ़ सकते हैं तस्बीह, और सजदे में भी जाके पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति पर वो भी इस रुकू और सजदे में भी ये पढ़ा, तो आप सुबहान रब्बी अलआला के बाद भी ये पढ़ सकते हैं, और ये एक दुआ भी हो गई आपकी तरफ से। तो कोशिश किया करें कि इस तरह से बदल बदल के करें, और उम्मीद है कि आप लोग सजदों में तो दुआएं कर ही रहे होंगे। खास तौर पे अगर आपको मसनून दुआएं याद हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं।
आज का जो जिक्र है वो बहुत मुख्तसर जिक्र है, लेकिन इसकी बड़ी फजीलत है। इसकी पहली फजीलत यह है कि नबी अलैहिस्सलाम इसको वितरों में सलाम फेरने के बाद 3 दफ़ा पढ़ा करते थे। इसकी दूसरी फजीलत यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पे औरतों को ये फरमाया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और इस जिक्र की जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी मुहाफ़ज़त करें, यानी इसकी पाबंदी किया करें। तीसरी इसकी फजीलत ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते थे तो वुज़ू करने से पहले ही, यानी अपने बिस्तर पे ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 10 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, 10 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह और 10 दफ़ा ये जिक्र फरमाया करते थे। अब ये जिक्र सिर्फ 3 कलिमात पे मुश्तमिल है, बहुत ही मुख्तसर जिक्र, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस। तो ये आसान भी है, आप अगर इसको बाकी टाइम पे नहीं भी याद रख सकें तो कम अज़ कम वितरों के बाद आप इसको ज़रूर 3 दफ़ा कहा करें ताकि ये सुन्नत दोबारा ज़िंदा हो जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को इसका पता नहीं है और वो इस सुन्नत को भुला चुके हैं। और आज की जो दुआ है ये इतनी जामे दुआ है, और मैंने देखा है कि हरम मक्का में भी और मदीना में भी वितरों में ये दुआ ज़रूर मांगी जाती है। तो दुआ में تقریباً ہر چیز شامل ہو گئی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, کہ اے اللہ تم ہمیں ایسا خوف اپنا, ایسا ڈر اپنا عطا فرما کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یعنی اتنا میرے اندر خوف خدا ہو کہ گناہ کرنے سے پہلے مجھے ڈر لگے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور اے اللہ مجھے اپنی ایسی اطاعت عطا فرما جو مجھے جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور اللہ ہمیں ایسا یقین دے, اتنا پختہ یقین ہو میرے اندر کہ دنیا کی مصیبتیں مجھے کچھ لگے ہی نہ, میرے لیے ہلکی ہو جائیں, میرے لیے آسان ہو جائیں. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو اتنا کوئی یقین رکھنے والا بندہ ہوتا ہے کہ دنیا کی مشکلات اس کو بڑی نہیں لگتی. پھر اور پھر اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا وجعله الوارث منا, اے اللہ ہمارے کانوں کو, آنکھوں کو اور قوتوں کو ایسا کر دے کہ ہم جب تک ہماری زندگی ہے ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کو ہمارا وارث بنا دے. یعنی آپ دیکھیں جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے تو اس کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, سنائی نہیں مجھے دیتا, میری قوتیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں دن بدن, اور پھر ہر وقت وہ یہ اس فکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کر دے, یہ نہ ہو کہ میری بینائی چلی جائے, مجھے نظر ہی نہ آئے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے انسان ضرور یہ دعائیں کرتا رہے, کیونکہ زندگی میں اگر یہ قوتیں نہ ہوں تو انسان اس زندگی میں بھی کوئی خیر کے کام زیادہ کر نہیں سکتا. اور پھر وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا, اور اے اللہ ہمارا انتقام لینا ہمارے ظالموں سے, جو ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے انتقام لینا. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ أَعَادَانَا, اور اے اللہ ہماری مدد فرمانا ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, اور اے اللہ ہمارے دین میں مصیبت نہ کوئی آئے. یعنی اور تو دنیا کی مصیبتیں پھر بھی انسان جھیل سکتا ہے, لیکن اگر دین میں مصیبت آ گئی اور دین ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کچھ نہ رہا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, اے اللہ دنیا کو ہی میرا سارا ہم غم نہ بنا دینا کہ ساری فکر بس مجھے دنیا کی پڑی رہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, اور اے اللہ تعالیٰ میری علم کی انتہا بھی نہ بنا دینا کہ بس اسی کے علم کے پہ پیچھے پڑی رہوں, آخرت کے بارے میں میں غافل رہوں. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کا تو بہت ان کو علم ہوتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, تو ان کی علم کی انتہا بس دنیا ہی ہے, یہیں کا علم لینے کے پیچھے ساری اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا, اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم ہی نہ کریں. اور یہ ہر جگہ کے لیے, چاہے حکومت کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ آ جائیں کہیں جو کہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہوں, تو تب کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ دعا کریں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا. اسی طرح آپ کی جاب میں یا آپ کے اور کہیں پہ بھی آپ کو جہاں پہ ڈر ہو کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتیاں کریں, کوئی ناانصافی کریں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر وہ لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں, تو اس کے لیے یہ دعا بہت ہی اچھی ہے.
ایک اور بہت پتے کی بات آپ لوگوں کو بتانی تھی, وہ یہ کہ جب آپ کپڑے بدلیں تو کپڑے بدلتے وقت بھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے, یعنی آپ بسم اللہ کہہ کے اپنے کپڑے اتاریں, یا آپ غسل کرنے جا رہے ہیں یا کپڑے چینج کرنے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو جنات کی نظروں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے, ورنہ جنات انسانوں کو ننگا دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جنات کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں. تو اس وقت ہی حفاظت کرنی چاہیے اپنی کہ بسم اللہ, بسم اللہ سب کو آتا ہے, مگر یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت ہم نے کہنا ہے جس وقت کے ہم اپنے کپڑے اتارنے لگے. تو حدیث میں آتا ہے جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان حجاب بن جاتا ہے یہ کہ آدمی جب بسم اللہ کہہ دیتا ہے, یہ طبرانی کی روایت ہے. तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए, अपनी हिफाजत के इंतज़ामात रखिए, अपनी हिफाजत सुबह शाम के अज़कार के साथ करिए, सोने के अज़कार के साथ करिए। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इमाम नबवी की बात कि अगर आपने सोने के अज़कार की पाबंदी कर ली, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी कर दी और नमाज के बाद के अज़कार की पाबंदी कर ली, तो आप अल्लाह ताला के हाँ कसरत से अल्लाह की याद करने वालों में लिख लिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए बहुत कसरत से जिक्र करने की। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।